जी आगा बिस्मिल्लाह कीजिए।
जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबीजीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कल से हमने इमामत के मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनमें से एक शोबे के हवाले से बात शुरू की थी, जिसका ताल्लुक के हमारे अमल से ज्यादा है, और वो शोबा है रसूल अकरम की इल्मी जानशीनी का। इसका मतलब ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पे ऐसा दीन नाजुल हुआ कि जो कयामत तक के लिए इंसानों की हिदायत के लिए काफी रहेगा। हर इंसान ने उन्हीं के दीन पे अमल करना है, और जाहिर है कि तब अमल कर सकेगा जब उसके पास दीनी तालीमात पहुंचे। तो ये दीनी तालीमात पहुंचाने का सिस्टम और निजाम क्या है, इसमें दो जो नजरिए और मकतब थे वो हमने कल जो है पेश किए थे। एक हमारे अहले सुन्नत बिरादरान का है, वो कहते हैं कि इस दीनी शोबे में, इस इल्मी शोबे में रसूल अकरम का कोई खास एक शख्स जानशीन नहीं होगा, बल्कि एक शख्स की जगह तमाम जो रसूल अकरम के सहाबा हैं, चूंकि तमाम सहाबा आदिल हैं तो वो तमाम सहाबा जानशीन हैं इस इल्म के, और फिर उनके बाद उनके जो सहाबा हैं, सहाबा के सहाबा जिसको ताबईन कहा जाता है, वो हैं उनके बाद तबा ताबईन हैं, फिर अहादीस के रावी हैं, और फिर मुहद्दिसीन आते हैं और उन्होंने रसूल अकरम की सुन्नत को और अहादीस को जमा कर दिया एक किताब के अंदर, किताबों के अंदर। अब एक तो कुरान मजीद है जो हिदायत की लाजवाल किताब है, और एक अहादीस नबवी है, इन दोनों से हिदायत जो है वो ली जाएगी। इसके मद्दे मुकाबिल हमने कहा था कि मकतबे अहले बैत ये कहता है कि एक शख्स को ही जानशीन होगा लाजमन। तो हमने कल जो है वो अहले सुन्नत बरादरान के हवाले से जो नजरियात उनके थे उनके हवाले से बात की थी, और हमने कहा था कि वो जो पूरा नजरिया है कि रसूल अकरम के सहाबा, सहाबा के बाद ताबईन, फिर तबा ताबईन, फिर राविया ने अहादीस, और फिर जो है मुहद्दिसीन और किताबें, तो इन सब का दारोमदार इस पे है कि सारे सहाबा आदिल हैं। क्या सारे सहाबा आदिल हैं, इस हवाले से हमने अहले सुन्नत के जो दलाइल थे वो देखे थे। हमने देखा था कि उनके पास जो है वो क्या दलाइल हैं इसके, वो कौन सी चीजों को दलील बनाते हैं। तो हमने कहा कि वो कुरान मजीद के हवाले से कुछ कुछ जो है वो आयात बयान करते हैं कि रसूल अकरम के जो सहाबा हैं वो सारे आदिल हैं। जब सारे आदिल हैं तो फिर उनमें से जिसकी भी हिदायत ली जाएगी तो हम वहां तक पहुंचेंगे जहां तक के हम पहुंचे थे। फिर हमने जो है वो देखा था कि ये जो आयात बयान करते हैं, क्या ये आयात दलील बन सकती हैं। तो हमने कहा कि हाँ, आयात में अगर इस तरह की कोई चीज हो कि जो बयान करे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के जो सहाबा हैं वो सारे आदिल हैं, तो ये दलील हो जाएगी। क्या अहादीस दलील बन सकती हैं, तो हमने कहा कि अहादीस सहाबा की अदालत पे दलील नहीं बन सकती, उसका सबब यह है कि जो भी हम हदीस लेंगे उसमें जो सबसे पहला रावी होगा रसूल अकरम से वो खुद सहाबी होगा। तो पहले सहाबी की अदालत साबित हो तो फिर जो है वो हदीस भी साबित होगी। अगर हदीस के पहले रावी की ही जो रिवायत है, जो हदीस अदालत है, वो साबित नहीं हुई तो जाहिर है कि फिर हदीस भी साबित नहीं होगी। तो हदीस के जरिए से अदालत सहाबा साबित करना ये मुमकिन नहीं है। हाँ, कुरान मजीद की आयात के जरिए से अगर साबित किया जाए तो ये दलील बन सकती है। फिर हमने कहा कि हम देखते हैं कि कुरान मजीद की वो कौन सी आयात हैं जो ये दलील बन सकती है, और उसमें हमने सबसे पहले तो इमाम ज़हबी की 6 जो आयात वो बयान करते हैं वो हमने पेश की थी कि ये 6 आयात हैं कि जो दलील बन सकती हैं अदालत सहाबा पर। उसके बाद हमने कहा कि 2 मजीद आयात भी हैं कि जो दलील बन सकती है या बरादरान अहले सुन्नत उसको जो है दलील बनाते हैं। तो क्या हम जो है वो उनके जरिए से ये दलील जो है बना सकते हैं। फिर हमने वो एक एक आयत एक करके जो है वो बयान किया था, और हमने देखा कि जो आयत वो बयान करते हैं अदालत सहाबा के लिए उसको हमने 2 नजर से देखा था। एक, क्या ये सहाबा के लिए है? नंबर 2, क्या ये सहाबा की अदालत बयान करती हैं? तो हमने देखा कि 2 आयात तो ऐसी थी जिसमें लफ्ज उम्मत है, और उम्मत लफ्ज जो है वो रसूल अकरम के सहाबा के लिए महदूद करना, इसके लिए कोई दलील मौजूद नहीं है। तो ये आयतें वसी हैं जबकि जो दावा है वो इससे कम है। फिर हमने कहा कि कुछ ऐसी आयतें हैं कि जो रसूल अकरम के कुछ साथियों को तो बयान करती हैं, तमाम को बयान नहीं करती, इसलिए वो आयत तमाम सहाबा के लिए नहीं है। कोई भी ऐसी आयत नहीं है कुरान मजीद में कि जो रसूल अकरम के सहाबा के बारे में हो, कोई और उसमें शामिल न हो और तमाम सहाबा शामिल हो, ऐसी कोई कुरान मजीद की इस्तलाह मौजूद नहीं है। या तो अंसार और मुहाजरीन है कि जो सहाबा में से एक तबका है जबकि बाकी बहुत ज्यादा ज्यादा तादाद जो है वो इससे बाहर है, या फिर हमने देखा कि जो है उसमें फिर कहा गया कि इनमें से जो साले अमल करेंगे और ईमान लाएंगे तो इसका मतलब ये है कि सबके लिए नहीं है। दूसरी चीज जो हमने कल देखी थी वो ये है कि जो अदालत सहाबा है वो अदालत सहाबा हम देखना चाहते थे बहैसियत रसूल अकरम से हदीस के रावी की हैसियत से। तो रावी की हैसियत से 3 शराइत अदालत की बयान की जाती है बुनियादी। एक ये है कि मुसलमान हो, नंबर 2 ये है कि सदाकत हो, उसके पास झूठा ना हो, नंबर 3 ये है कि हाफिजा उसका कवि हो, और जिसको हदीस की उस जबान में इल्म हदीस की जबान में उसको जब्त कहते हैं, जाबित हो। तो ये 3 शराइत है, मुसलमान हो, सदाकत हो उसके पास, और हाफिजा हो। जबकि इन आयात में इस्लाम और मुसलमान के हवाले से तो बात थी, नेकी के हवाले से तो बात थी, लेकिन न सदाकत के हवाले से कोई बात थी न ही जो है हाफिजे के हवाले से कोई बात थी। तो इस हवाले से ये आयात जो है इनके लिए अदालत को साबित नहीं करती है। अब हम आज ये देखेंगे कि आखिर कुरान मजीद के जो खुद हिदायत की किताब है, चाहे वो इंसानों के लिए है हो, जैसे कि सूरह बकरा में इरशाद हुआ कि शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, कि ये किताब जो है वो तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। या जैसे सूरह बकरा के ये इब्तदा में कहा गया कि हुदल्लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तो बुनियादी तौर पे तो ये हिदायत की किताब है। तो क्या कुरान मजीद ने हिदायत के निजाम को बयान किया है? अगर तो कुरान मजीद ने हिदायत के निजाम को बयान नहीं किया तो फिर हम कहेंगे कि कुरान मजीद अपनी हिदायत में नाकिस है। इसलिए कि हिदायत की किताब अगर हिदायत के निजाम को बयान न करे तो फिर वो हिदायत में नाकिस है, जबकि कुरान मजीद एक कामिल किताब है। इसलिए कुरान मजीद निजाम हिदायत के हवाले से क्या कहता है, ये आज हम इस हवाले से जो है देखेंगे। तो इब्तदा हम करते हैं सूरह लैल की इस आयत से कि कहा गया कि इन्ना अलैना लल्हुदा, हिदायत हमारे ऊपर है, बेशक बिलाशक हिदायत हमारे ऊपर है। यानी हिदायत करना हमारी जिम्मेदारी है, हिदायत हम करेंगे। या आसान अल्फाज में यूं कहा जाए कि इंसानों को मुखातब किया जा रहा है कि तुम तक हिदायत हम पहुंचाएंगे। हिदायत की तलाश के लिए मारे मारे फिरना ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, हिदायत पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, हम पहुंचाएंगे हिदायत। और जब हमारी हिदायत पहुंचे तो फिर अमल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हिदायत के लिए तलाश जुस्तजू अपनी जिंदगी वक्फ कर देना ये नहीं है आम इंसान के लिए। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हिदायत हम पहुंचाएंगे, उसके लिए हम जराए इंतखाब करेंगे, हम तुम तक हिदायत पहुंचाएंगे। जब हिदायत तुम तक पहुंचे तो फिर उस पे अमल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए कहा इन्ना अलैना ललहुदा। और ऐसा भी नहीं है कि जब अल्लाह तबारक व तआला हिदायत कर दे तो फिर भी हिदायत की जरूरत बाकी रहे, नहीं। अल्लाह की हिदायत इंसान के लिए काफी है, जो जिस भी जरिए से अल्लाह तबारक व तआला हिदायत पहुंचाए वो हिदायत इंसान के लिए काफी हो जाती है। इसलिए सूरह फुरकान में कहा कि वो कफा बे रब्बे का हादिया, तेरा रब तेरे लिए हिदायत के हवाले से काफी है। कि जब अल्लाह ने हिदायत कर दी तो अब जो है तुम्हें किसी और हिदायत की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहां से ये मालूम हुआ कि हिदायत करना, हिदायत पहुंचाना ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिम्मे लिया हुआ है कि हम हिदायत करेंगे। इसको वजाहत के साथ फिर मजीद जो है दो आयात में जो है वो बयान किया गया। और ये दोनों आयात जो है वो उस मौके की हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने बनाया और फिर जो कुछ हुआ जन्नत में भेजा, और फिर शैतान के कहे पे उसने जो है नाफरमानी की, फिर अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया कि अब जमीन पे चले जाएं। तो वहां से ये आयात जो है शुरू होती हैं। दो जगह पे जो है इसको बयान किया गया है, एक सूरह बकरा है, एक सूरह ताहा है। सूरह बकरा में कहा गया कि कुल ना, हमने कहा एहबतु एहबतु, नीचे उतर जाएं, मिनहा इसमें से यानी जन्नत में से, जमीअन सब तुम, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, फिर अगर मेरी हिदायत मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम तक पहुंचे, फिर अगर मेरी तरफ से हिदायत तुम तक पहुंचे, फमन तबिअ हुदाया, तो जो शख्स मेरी हिदायत की इत्तबा करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो न उस पे कोई खौफ होगा और न जो है उसको कोई जो है वो गम होगा। लेकिन अगर वो कुफ्र करेगा, वल्लदीन कफरू, लेकिन हमारी हिदायत पहुंची कबूल नहीं कर रहा, रद्द कर रहा है उसको, वल्लदीन कफरू, तो जो कुफ्र करेंगे हमारी हिदायत का, वकद्दबू बिआयातिना, और हमारे जो मोजज़ात हैं उनको भी उनका भी इनकार करेगा, उलाएक अस्हाबुन्नार, ये जहन्नुमी हैं, हुम फिया खालिदून, ये हमेशा उसी में रहेंगे। तो यहाँ पे जो शर्त है वो ये है कि फइम्मा यअतीअन्नकुम मिन्नी हुदन, अगर तुम तक पहुंचे मेरी हिदायत, शर्त है हिदायत तुम तक पहुंचे, फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है फमन तबे हुदाया, तो फिर जो मेरी हिदायत पे की इत्तबा करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उस पे ना खौफ होगा ना गम होगा। तो हिदायत पहुंचाना अल्लाह तबारक तआला ने अपने जिम्मे लगाया है और कहा कि हिदायत हम पहुंचाएंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस हिदायत पे अमल करो। फिर हिदायत के लिए मारे मारे फिरना, अपनी जिंदगी देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, कभी हालात होते हैं ऐसे कि हिदायत के लिए थोड़ी तगोदोकोर करनी पड़ती है, वो फिर उसका अज्र अलहदा है, लेकिन बुनियादी तौर पे हिदायत पहुंचाना अल्लाह तबारक तआला ने अपने जिम्मे लिया है। ये दूसरी जो आयत है सूरह ताहा की है, वो वही मकाम है कि जब अल्लाह तबारक तआला हजरत आदम, हजरत हवा और सबको नीचे हुक्म दे रहा था कि नीचे चले जाएं, तो उसी मौके की है, ताला एहबिता मिनहा जमीअन, हमने दोनों को कहा कि नीचे उतर जाएं आप सब, बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुवुन, तुम में से एक हिस्सा जो है एक ग्रोह दूसरे ग्रोह का दुश्मन बनेगा। फइम्मा यअतीअन्नकुम मिन्नी हुदन, तो जब तुम्हारे पास पहुंचे मेरी हिदायत, अगर तुम्हारे पास पहुंचे मेरी हिदायत, फमन तबिअ हुदाया, तो जो मेरी हिदायत पे अमल करेगा, उसकी इत्तबा करेगा, फला यज़िल्लु, वो कभी गुमराह नहीं होगा, वला यशपा, न वो मुशक्कत में पड़ेगा। तो यहाँ बिल्कुल वाज़े तौर पे जो है बयान किया गया कि हिदायत तुम तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है, हम हिदायत पहुंचाएंगे, जब हिदायत हम पहुंचाएंगे तो फिर उस पे अमल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो हिदायत पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक तआला ने अपने जिम्मे ली है। ये निजामे हिदायत का पहला नुक्ता है जो हमें समझना चाहिए, कुरआनी निजामे हिदायत का पहला नुक्ता ही ये है कि हिदायत अल्लाह तबारक तआला अपने जिम्मे लेता है और वो हिदायत पहुंचाएगा। अब जब हिदायत पहुंच जाए तो फिर अमल करना इंसान की जिम्मेदारी है। अब ये जो निजाम हिदायत का कुरानी है, अल्लाह तबारक तआला कैसे पहुंचाएगा, आम आदमी तक कैसे पहुंचेगी और खसूसी आदमियों तक कैसे पहुंचेगी। जाहिर है कि खसूसी आदमी जिसको हम अंबिया कहते हैं, उन तक अल्लाह की हिदायत अपने मखसूस तरीके से पहुंचती है, जो या तो फरिश्तों के जरिए पहुंचती है या अल्लाह तबारक तआला डायरेक्ट जो है पहुंचाता है, बिला वास्ता पहुंचाता है। लेकिन बाकी इंसानों तक इनको जरिया बनाया जाता है कि ये जरिया है अल्लाह की हिदायत का। इसको मजमुई तौर पे जो है कुरान मजीद ने बयान किया है सूरह आराफ आयत जो है 181 में, वह मिम्मन खलकना, और जिन्हें हमने पैदा किया है, यानी वो लोग जिनको हमने पैदा किया, जाहिर है कि सारे इंसानों को अल्लाह ने ही पैदा किया है, उम्मतुन, उनमें एक जमात है, एक गुरु है, एक गुरु हमेशा रहेगा, यहदून बिल हक, वो हिदायत करते हैं लेकिन हक के साथ। हक एक कुरानी इस्तला है और इसके लिए कहा गया है कि अल हक मिर रब्बिक, हक सिर्फ वही है कि जो तेरे रब की तरफ से आए, जो तेरे रब की तरफ से आए वो तो हक है, बाकी जो किसी और तरफ से आए वो हक नहीं है। तो कहा गया कि कुछ लोग हैं जिन तक हमारा हक पहुंचेगा, मसलन फरिश्तों के जरिए से, वही के जरिए से, और वो उस हमारे नाजिल किए गए हक और हिदायत के मुताबिक बाकी दूसरों की हिदायत करेंगे। तो कहा कि वह मिम्मन खलकना उम्मतन, उम्मतन के जिन्हें हमने पैदा किया है उनमें एक ऐसी जमात है जो हमेशा रहेगी, यहदून बिल हक, वो हक के साथ हिदायत करेंगे, वह भी यादिलून, और इसी हक के साथ ही वो अदल भी करते रहेंगे। तो इनके पास हक जो है वो हमारी तरफ से आएगा, हम उनके ऊपर हक नाजिल करेंगे और वो फिर जो है उसी हक के मुताबिक दूसरों की हिदायत भी करेंगे, और उसके मुताबिक अमली तौर पर मुआशरे में अगर उनको हैसियत दी जाए तो वो उसके साथ, उस हक के साथ, उस हिदायत के साथ, खालिस हिदायत के साथ अदल भी करेंगे। कौम मूसा के हवाले से इसी जो है वो निजाम को बयान किया जा रहा है, इसी सूरह आराफ में, इससे पहले बयान हुआ 159 आयत में, वमिन कौम मूसा उम्मतुन, मूसा के कौम में भी एक गुरोह था, यहदून बिलहक, जो हक के साथ हिदायत करता था, वह भी यादलून, और उसी के साथ अदल भी करता था। तो यहाँ पे अल्लाह तबारक तआला ने ये बयान किया कि एक तो वो होंगे जिनको हम हादी कहेंगे, ये हादी वो अफराद होंगे कि जिनकी तरफ हम हिदायत नाजिल करेंगे, वो हिदायत उनके पास हक, खालिस हक के तौर पे होगी, और फिर आगे वो हिदायत करेंगे उसी हक के साथ, उसी हिदायत के साथ के जिसको हम नाजिल करेंगे, खालिस उसी के साथ। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मिलावट हो जाएगी, उसमें कोई कमी कोताही हो जाएगी, उसमें कोई तब्दीली आ जाएगी, नहीं, बिलहक जो हमने नाजिल किया है, खालिस उसी हक के साथ वो हिदायत करते रहेंगे और उसी के साथ वो अदल करते रहेंगे। और कहा कि कौम मूसा में भी हमने जो है इस तरह का एक गुरु जो है वो रखा था, और वो हक के साथ हिदायत करता था और इसी हक के साथ जो है अदल भी करता था। अब ये एक मजमूई तौर पे तो कहा गया, अब उसकी तफसील आगे जो है फिर मजीद बयान की जा रही है कि ये जो होंगे ये कौन होंगे और किस तरह होंगे। तो कुरान मजीद जो इस हवाले से मिसालें बयान करता है, वो मिसालें चूंकि उस दौर में जो कुरान मजीद के मुखातब थे वो ज्यादातर वो अफराद थे कि जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे, या तो कुरैश मक्का थे कि जो खुद हजरत इब्राहिम की औलाद में से थे, हजरत इस्माइल की औलाद में से थे, आले इब्राहिम में से थे, या फिर जब आप मदीना आए तो यहूदी थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से हजरत इब्राहिम तक पहुंचते हैं, या फिर जो है ईसाई थे कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए से वो भी हजरत इब्राहिम तक पहुंचते हैं। तो बुनियादी तौर पे चूंकि ऐसे अफराद थे कि जो हजरत इब्राहिम को मरकज बनाते थे, इसलिए हजरत इब्राहिम को मरकज बना के कुरान मजीद ने मिसालें दी हैं। ये जो आयात आपकी खिदमत में पेश की जा रहे हैं, सूरह अनआम की आयत 84 से आयत 90 तक है, ये पांच आयात, छह आयात हैं जो बुनियादी इस हिदायत के निजाम को तफसील के साथ बयान करती है। कहा गया कि वहबना लहू इसहाक व याकूब, हमने इब्राहिम को अता किया इसहाक, और उसके साथ फिर याकूब हजरत इसहाक के बेटे हैं, कुल्लन हदैना, इन सबको हमने हिदायत दी थी। जैसे कहा कि अंबिया को अल्लाह तबारक तआला हिदायत देगा, हादी को अल्लाह तबारक तआला हिदायत देगा, फिर वो हादी उसी हिदायत से आगे हिदायत करेंगे। तो कहा कि कुल्लन हदैना, इन सबको हमने हिदायत दी थी, वह नूहन हदैना मिन कबल, और इससे पहले यानी हजरत इब्राहिम से पहले हमने नूह को भी हिदायत दी थी, व मिन दुरियत ही, और हजरत इब्राहिम की दुरियत में दाऊद व सुलेमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून, ये सारे अंबिया हजरत इब्राहिम की नस्ल में से जो है वो अंबिया हैं। वो कदालिक नजजिल मोहसिनीन, हम इसी तरह से जो है नेकोकारों को जजा देते हैं। तो ये मिसालें हजरत इब्राहिम की इस जुरियत में से है। व जकरिया व यहिया व ईसा व इलियास, ये भी हजरत इब्राहिम की इसी जुरियत में से, कुल्लुन मिनस सालिहीन, ये सब जो है सालिहीन में से थे। व इस्माइल वलयसअ व यूनुस व लूतन, ये भी हजरत इब्राहिम की नस्ल में से अंबिया हैं। कुल्लन फजलना अलल आलमीन, इन सब को हमने आलमीन पे फजीलत दी थी। अब ये जो है वो अंबिया के नाम लेके उनका तारुफ कराया गया। अब मजीद जो तारुफ हो रहा है वो इन्हीं अंबिया के खानदान में से तारुफ हो रहा है। व मिन आबाइहिम, और इन्हीं अंबिया के आबा में से हमने कुछ मुंतखब किए थे। व जुरियातहिम, और इन अंबिया की जुरियत को हमने इंतखाब किया था। वह इख्वानहिम, और उनके भाइयों को हमने मुंतखब किया था। वजतबैनाहुम, हमने उनको इज्तबा किया था, इंतखाब बनाया था, इंतखाब किया था। वहदैनाहुम इला सिरात मुस्तकीम, और इन सबको हमने सिरात मुस्तकीम की हिदायत दी थी। तो अब आप अगर इसको देख लें यहां तक, तो मालूम होगा कि हजरत इब्राहिम की औलाद में से जो अंबिया थे उन अंबिया की कुछ मिसालें दी, और फिर कहा कि फिर हम जो हिदायत रखेंगे तो इस नबी के खानदान में से, अंबिया के खानदान में रखेंगे, खानदान से बाहर नहीं होगी। वह मिन आबाएहिम, या तो नबी के आबा में रखेंगे। वह ज़ुरियातहिम, या उनकी जुरियत में रखेंगे। वह इख्वानहिम, या इन अंबिया के जो है भाइयों में हम रखेंगे, तो खानदान में रखेंगे। हमने उनको इज्तबा किया, हमने उनको इंतखाब किया, और इन सबको हमने जो है सिरात मुस्तकीम की हिदायत दी। अब ये बयान करने के बाद कहा जा रहा है कि ज़ालिका हुदल्लाह, ये है अल्लाह की हिदायत, यानी अल्लाह की हिदायत का निजाम या तो अंबिया के जरिए हम करेंगे या अंबिया के खानदान के जरिए से। आबा जुरियात इख्वान, आबा जुरियात इख्वान, उनके जरिए से हम जो है उनको इज्तबा करेंगे, उनको हम हिदायत देंगे, और फिर जो है वो आगे हिदायत करेंगे। ज़ालिका हुदल्लाह, ये है अल्लाह की हिदायत का निजाम। यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादिही, अपने बंदों में से अल्लाह अपनी मशीयत के मुताबिक हिदायत करता है। लेकिन ये भी ऐसे है कि ऐसा नहीं है कि अंबिया को अल्लाह तबारक तआला ने इंतखाब किया तो अब उन पे कोई खुदा का कानून नहीं होगा। नहीं, उन पे भी खुदा का कानून है। वलो अशरकू, अगर ये भी शिर्क करते, ला हबित अनहुम मा कानू या अमलून, तो जो कुछ उन्होंने किया कराया था सारा उनका अकारत चला जाता। तो कानून सब पे है, और कानून ये जिंदगी के आखिरी लम्हे तक जारी रहेगा। किसी को अल्लाह तबारक तआला ने ये नहीं कहा कि अब तुमने इतनी नेकियां कर ली हैं कि अब कोई भी बुराई करो हम तुम्हें सजा नहीं देंगे। नहीं, अल्लाह तबारक तआला का निजाम जो है वो इस तरह का नहीं है। किसी को भी अल्लाह तबारक तआला जो है छोड़ता नहीं है। अंबिया का नाम लेके फिर कहा कि अगर ये भी शिर्क करते तो हम इनकी भी सारी कमाई जो है वो अकारत कर देते। उलाइक अल्लदीना आतैना हुमुल किताब वल हुक्मा वन नबुव्वा, ये हैं वो अफराद के जिनको हमने जो है किताब दी थी और उसके साथ साथ हुक्म दिया था। हुक्म दिया था मतलब ये कि हुक्म करने का हक दिया था। वन नबुव्वा, नबुव्वत दी थी। फइन यकफुर बिहा हाउलाए, कहा गया कि ए मुस्तफा, अगर ये कुरेश इस हमारी हिदायत का कुफ्र करते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फकत वक्कलना बिहिम कौमन लैसू बिहा काफिरीन, तो हम जो है इसकी जगह पे कुछ और कौम लाएंगे जिनको ये हिदायत देंगे और वो इनकार करने वाले नहीं होंगे। लैसू बिहा काफिरीन, उलाइकल्लदीन हदल्लाहु, ये हैं वो अफराद के जिनकी हिदायत अल्लाह तबारक तआला ने की थी। फहुदाहुम इत्तदे, अब हुक्म दिया जा रहा है कि चूंकि इनकी हिदायत अल्लाह ने की है तो ए मेरे बंदो, तुम जो है इनकी इक्तदा करो, इनके हिदायत पे चलो, इनसे हिदायत लो और उसकी इक्तदा करो। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इन हुवा इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन। और कह दीजिए कि इस कुरान मजीद और इस हिदायत पहुंचाने पे मैं कोई तुमसे अजर तलब नहीं करता। ये जो कुरान मजीद है ये तो नसीहत है आलमीन के लिए। तो ये आयात जो है वो मुसलसल आप इसको एक दफा सुकून के साथ बैठ के तिलावत करें और इसका तर्जुमा पढ़ें तो आपको पूरा निजाम इसमें जो है कुरान मजीद की जो निजाम हिदायत है अल्लाह का वो इन आयात में नजर आएगा। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इब्राहिम से शुरू किया है और ऐसा नहीं है कि हजरत इब्राहिम से हिदायत शुरू होती है, जैसे इसमें भी कहा गया कि इनसे पहले हमने नूह को भी हमने हिदायत दी थी। तो हिदायत का निजाम हजरत आदम से शुरू होता है, लेकिन चूंकि कुरान के मुखातब जो है ज्यादातर अक्सरियत जो है वो थी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानती थी, तो उसको हिदायत मिसाल जो है वो मरकज बना के मिसालें पेश की गई। अंबिया के नाम लिए मुख्तलिफ अंबिया, जिसमें जो है वो हजरत दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा, हारून, फिर जो है जकरिया, यहया, ईसा, इलियास, उसके बाद इस्माइल, अलियसा, यूनुस, लूत अलैहिस्सलाम, इन सबके जो है नाम लिए और कहा कि इनको हमने जो है हिदायत दी थी। फिर कहा कि एक तो हम अंबिया को हिदायत देते हैं, या अगर नबी ना हो तो फिर हम ये हिदायत उन उसके खानदान में रखते हैं, अंबिया के खानदान से बाहर हिदायत नहीं होगी। व मिन आबाए हैं, या फिर हम जो है उनके आबा को, व दुरियात हैं उनकी जुरियत को, व इखवान हैं उनके भाइयों को, इश्तबाए ना हम उनको इंतखाब करेंगे और उनकी हम हिदायत करेंगे और इनकी हम हिदायत करेंगे और इनकी हिदायत पे तुमने जो है अमल करना है। ये कुरान मजीद ने हिदायत के निजाम के हवाले से जो है वो दिए। एक दफा हम फिर इसका जो है तर्जुमा जो है आपकी खिदमत में अर्ज कर देते हैं ताकि जहन में बैठे कि कुरान मजीद इन आयात के जरिए से क्या हिदायत देना चाहता है। और हमने इब्राहिम को, इसहाक और याकूब अता किए, सबकी रहनमाई भी की, और इससे कबल हमने नूह की रहनमाई की थी, और इनकी औलाद में से दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून की भी हमने रहनमाई की थी, और नेक लोगों को हम इसी तरह जजा देते हैं, और जकरिया, यहया, ईसा और इलियास की भी हमने रहनमाई की थी, ये सब सालहीन में से थे, और इस्माइल, यस, यूनुस और लूत की भी रहनमाई की, और सबको आलमीन पर फजीलत हमने अता की, और इसी तरह उनके आबा और उनकी औलाद और उनके भाइयों को भी हिदायत दी, और हमने उन्हें मुंतखब कर लिया और हमने राह रास्त की तरफ उनकी रहनमाई की। ये है अल्लाह की हिदायत, ये है अल्लाह की हिदायत। इसका मतलब ये कि ये है अल्लाह की हिदायत का निजाम, या अंबिया या उसका खानदान, जिससे वो अपने बंदों में से जिसे चाहे नवाजे, और अगर वो लोग शिर्क करते तो उनके किए हुए तमाम आमाल बर्बाद हो जाते। यानी अल्लाह का ये जो कानून है वो अंबिया पे भी है, वो इन हादियों पे भी है, ऐसा नहीं है कि हादी कानून से बालातर है, नहीं, उन पे भी है। ये वो लोग हैं जिन्हें हमने किताब और हिकमत और नबुवत अता की। अब अगर ये लोग उनका इनकार करें तो हमने उन पर ऐसे लोग मुकरर कर रखे हैं जो उन इनके मुनकिर नहीं है। यानी ये रसूल अकरम को एक जो है तस्कीन दी जा रही है कि अगर ये कुरैश मक्का इनकार करते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम और लोग मुकर्रर करेंगे कि जो इसका इन हिदायत करने वालों के मुनकिर नहीं होंगे। ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत से नवाजा है, तो आप भी उन्हीं की हिदायत की इक्तदा करें। कह दीजिए मैं इस तबलीग कुरान पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, ये तो आलमीन के लिए फकत एक नसीहत है। तो यहां से मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक ताला ये जो निजाम हिदायत है वो हमेशा हादी के जरिए से रखता है, उनकी हिदायत अल्लाह तबारक ताला खुद करता है, उन तक हिदायत अल्लाह तबारक ताला अपने खुसूसी स्पेशल जो जराए हैं उनके जरिए से पहुंचाता है, जैसे वही हुआ, मलाइका हुए, या कभी कभी डायरेक्ट अल्लाह तबारक ताला मुखातब करता है अंबिया को, उन तक हिदायत अल्लाह तबारक ताला पहुंचाता है। और फिर हुक्म है कि इनसे हिदायत तुम लो और इनकी हिदायत की इक्तदा करो, इनकी हिदायत की पैरवी करो, ये अल्लाह की हिदायत का निजाम। अब ये हिदायत का निजाम जो है वो अगर चंद नुकात में हम बयान करें तो कहा कि ये वो हादी हैं कि हमने उनकी हिदायत की है, ये हिदायत याफ्ता हैं, हमने इनकी हिदायत कर दी है, ये हिदायत पर हैं। फिर कहा कि तो आप भी उन्हीं की हिदायत की इब्तदा करें। ये कौन है? या अंबिया है या अंबिया का खानदान है, इससे बाहर हिदायत जो है वो नहीं होगी। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व ताला ने सिर्फ जो है वो माजी के हवाले से बात की है, नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के हवाले से भी बात की है कि ये हादी उनके बाद भी रहेंगे। ये सूरह रअद की आयत है 7 नंबर, इन्नमा अंत मुंदिर, तो तुम सिर्फ खबरदार करने वाले हो, तुम सिर्फ खबरदार करने वाले हो, मुंदिर डराने वाले, खबरदार करने वाले, आगे कोई नुकसानदेह चीज हो तो खबरदार करना, इसको मुंजिर कहते हैं। कि आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप सिर्फ खबरदार करने वाले हैं, बहैसियत रसूल के, बहैसियत नबी के, ए मुस्तफा, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ खबरदार करना है। वले कुल्ले कौमिन हाद, और हर कौम के लिए एक हादी होता है। तो हर कौम, यहाँ कौम से मुराद जो है हर नस्ल है जो कयामत तक आएगी, हर नस्ल के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हादी रखा है, वो उसकी हिदायत करेगा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर में मुनजिर हैं, खबरदार करने वाले हैं, और अपने दौर में बहैसियत इमाम के हादी भी हैं, चूंकि रसूल अकरम की दो हैसियतें थी, एक बहैसियत नबी के हैसियत थी जिस हवाले से ये खिताब है उनसे, एक उनकी जो है बहैसियत इमाम के हैसियत थी कि वो हादी भी थे। लेकिन यहाँ पे चूंकि खिताब जो है बहैसियत नबी के है, इसलिए कहा जा रहा है कि आप सिर्फ खबरदार करने वाले हैं और हर कौम के लिए एक हादी है। इसका मतलब ये कि इसके बाद जो है वो हर हर नस्ल में हादी रहेगा, ऐसा नहीं है कि हादी नहीं होगा, सिर्फ जो है वो रसूल अकरम हादी हैं, अब हिदायत उन्होंने दे दी, अब इंसानों की जिम्मेदारी है, नहीं। वले कुल्ले कौम हाद, हर नस्ल में, हर कौम में, हर गुरोह में हादी अल्लाह तबारक ताला का रहेगा। और ये हादी वही होगा कि जिसकी पहले जो है वो खसूसियात बयान की कि अल्लाह तबारक व ताला हादी उसको बनाता है कि जिसकी पहले खुद हिदायत करता है, जिसको हिदायत खुद अल्लाह तबारक व ताला पहले दर्जे में देता है, फिर कहता है कि अब इसके जरिए से तुम दूसरों की हिदायत करो, तो वो हाद और हादी वही जो है सूरत आल है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रसूल अकरम से पहले के हवाले से कहा, बल्कि रसूल अकरम के बाद के हवाले से भी जो है कहा। अब ये निजाम है जो कुरान मजीद ने बयान किया है, इसको अगर आप एक दो नुकात में बयान करें तो यूं हम कह सकते हैं कि कुरान मजीद ये कहना चाहता है कि हिदायत करना अल्लाह तबारक ताला ने अपने जिम्मे लिया हुआ है, और अल्लाह ने कहा कि हिदायत हम पहुंचाएंगे। हिदायत जब खुदा की पहुंच जाए तो फिर आम आदमी की जिम्मेदारी ये है कि उस पर अमल करे। आम आदमी की जिम्मेदारी हिदायत ढूंढना, तलाश करना, उसके लिए मारा मारा फिरते रहना, ये आम इंसान की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक तआला ने नहीं लगाई। अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि हिदायत पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, फिर उस हिदायत को कबूल करना तुम्हारी जिम्मेदारी। फिर इसका पूरा निजाम बयान किया कि हम जो है हिदायत कैसे पहुंचाएंगे, तो कहा कि जिन इंसानों को हमने खल्क किया है उसमें एक ग्रुप रहेगा जिसकी हिदायत हम करेंगे, और वो इसी हिदायत यानी हक के साथ आगे फिर हिदायत करेगा। अब ये जिसकी हिदायत अल्लाह करेगा फिर वो आगे हिदायत करेगा, ये कौन है? तो कुरान मजीद ने जो है वो इसको बयान किया कि या तो अंबिया होंगे या उन अंबिया की खानदान में कोई हादी होंगे कि जो हिदायत करेंगे और इंसान उसके मुताबिक जिम्मेदारी अपनी अदा करे, इन इनसे अपना राबता जोड़े, इनकी इब्तदा में चले, इनसे हिदायत जो है ले, ये हिदायत करेंगे और ये खालिस हिदायत करेंगे, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, ये हक के साथ हिदायत करते हैं और उसी हक के साथ जो है अदल करते हैं। अब देखना यह है कि क्या ये जो कुरान मजीद से हमने निजाम अख्ज किया, क्या हमने सही नतीजा निकाला है या सही नतीजा नहीं निकाला? क्योंकि हो सकता है कि इंसान कोशिश करे और सही नतीजे तक न पहुंचे। तो इसकी क्या परख क्या है, पहचान क्या है? पहचान ये है कि क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको बयान किया है कि नहीं बयान किया। अगर अहादीस में इसको बयान किया गया हो तो इसका मतलब ये है कि हमने सही नतीजा निकाला है। ये जो हदीस आपकी खिदमत में सामने है ये सही मुस्लिम, सही बुखारी और तमाम अहादीस की किताबों में मौजूद है। ये हदीस बिरादरान अहले सुन्नत के पास जो है वो मुतवातिर है। मुतवातिर उस हदीस को कहते हैं कि जिसकी सनद जो रिवायत है वो हर तबके में इतने अफराद ज्यादा हों तादाद कि वो आपस में जो है वो झूठ पे इत्तफाक उनका मुमकिन ही ना हो, इतनी ज्यादा तादाद, तो उसको हदीस मुतवातिर कहते हैं। हर तबके में, सिर्फ एक तबके में नहीं, हर तबके। तो इस रिवायत को, इस हदीस को जो है वो अहले सुन्नत ने मुतवातिर कहा है, यानी हर तबके में इतने रावी हैं कि वो आपस में झूठ पे इत्तफाक नहीं कर सकते। सहाबा में से कहा गया है कि इस रिवायत को 16 सहाबा ने रिवायत किया है। बिरादरान अहले सुन्नत में कुछ उलमा हैं कि जिन्होंने खसूसी तौर पे किताबें लिखी हैं और उन रिवायात को जमा किया है, उन अहादीस को जमा किया है जो मुतवातिर हैं। तीन चार किताबें उनमें से जो है मशहूर हैं। एक जो है अल्लामा सुयूती की है, जलालुद्दीन सुयूती, उनकी किताब है। उसमें इस रिवायत के हवाले से कहा गया है कि इसको 15-16 जो है सहाबा ने रिवायत किया, फिर आगे इतनी या इससे बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है रावियों की हर तबके में। तो ऐसा नहीं है कि ये हदीस सिर्फ सही है, सही भी है और उसके साथ साथ मुतवातिर की हद तक है, यकीनी तौर पे ये रसूल अकरम ने ऐसा फरमाया है। अब इसके जो है जुमले आप देखें, पहले सही मुस्लिम वाली रिवायत के हम देखते हैं, फिर सही बुखारी वाली रिवायत के देखते हैं। सही मुस्लिम वाली रिवायत जो है कहा गया, ला तजालो ताइफतुम मिन उम्मती, रसूल अकरम फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत में से एक गुरु हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, ला तजाल कभी जायल नहीं होगा, ताइफतुन गुरु मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से एक गुरु हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो गुरु कभी खत्म हो, नहीं, हमेशा रहेगा। ज़ाहिरीना अलल हक, वो हक पर जो है वो गालिब होंगे, हक हक वही है कि जो अल्लाह की तरफ से हो, तो उनके पास हिदायत खालिस होगी। अल हक में रब्बिक, हक वही है जो तेरे रब की तरफ से, तो यहां से मालूम हुआ कि उनके पास जो है वो हिदायत खालिस हिदायत होगी। ला यज़ुर्रुहुम मन खज़लहुम, अगर कोई अफराद उनको छोड़ जाएं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, छोड़ने वाले अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे कि वो खुद जो है हिदायत से महरूम रह जाएंगे। लेकिन वो इस गुरोह को कि जो हक पर होंगे इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो खुद अपना नुकसान करेंगे। अगर छोड़ जाएं उनको तो अपना नुकसान करेंगे, इनका नुकसान नहीं करेंगे। और ये गुरोह कब तक रहेगा? हत्ता यातिया अमरुल्लाह, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला अपना अम्र जो है कयामत का वो लाए, यानी कयामत तक। वहुम कज़ालिका, और ये इसी तरह से रहेंगे हक पर, ये इसी तरह से गुरु बाकी रहेगा और ये हक पर रहेंगे, छोड़ने वाले इनको कोई नुकसान जो है नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इस हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुरोह की जो है वो जमानत दी है और कहा है कि मेरी उम्मत में एक गुरोह हमेशा रहेगा जो खालिस हक पर होगा। और खालिस हक कौन सा है? जो रब की तरफ से हो, उसमें न मिलावट हो, न तब्दीली हो, न कोई इजाफा हो, न कमी हो, ये जो है वो रहेगा। सही बुखारी में एक मजीद जो है, एक आप जो है मजीद इसमें खसूसियत बयान की गई है। कहा गया कि ला यजालू मिन उम्मती उम्मतुन, मेरी उम्मत में एक गुरु कभी खत्म नहीं होगा। ला यजाल, कभी खत्म नहीं होगा, कभी जायल नहीं होगा। मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से उम्मतुन एक गुरु। कायमतुन बे अमरिल्लाह, वो कायम होगा अल्लाह के अम्र से, वो अल्लाह के अम्र से कायम होगा। ये खसूसियत ऊपर वाली जो हदीस है उसमें नहीं थी। अल्लाह के अम्र से कायम होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है जो हम पहले बयान कर चुके कि इनकी हिदायत अल्लाह तबारक तआला करेगा, अपने मखसूस जराए से करेगा, अपने मखसूस जो है वो तरीकों से करेगा। इनकी हिदायत अल्लाह तबारक तआला करेगा, इसलिए ये जो कयाम करेंगे वो अल्लाह की हिदायत पे कयाम करेंगे, अल्लाह के अम्र से कयाम करेंगे। फिर कहा गया कि ला यज़ुर्रुहुम मन खज़लहुम, छोड़ने वाले इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जैसे ऊपर वाली रिवायत में था। एक मजीद जो है सिफत बयान की जा रही है, वला मन खालफहुम, अगर कोई इनका मुखालिफ बन जाए, छोड़ने वाले का मतलब ये है कि उनसे हिदायत नहीं लेता लेकिन मुखालिफ नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे एक सिफत मजीद बयान की जा रही है कि मुखालिफ भी बन जाता है तो भी इनको कोई नुकसान नहीं होगा, इनकी हिदायत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये खुदा की तरफ से हिदायत पर हैं, इसलिए इनकी हिदायत पे वो कोई असर अंदाज नहीं होंगे, चाहे छोड़ने वाले हों चाहे मुखालिफत करने वाले हों, इनके इस हिदायत पे कोई जो है असर अंदाज नहीं होंगे। हत्ता यातियहुम अमरुल्लाह, यहां तक के अल्लाह तबारक तआला अपने अपना अम्र जो है कयामत का वो लाए, वहुम, और ये इसी तरह से बाकी रहेंगे, इस इन्हीं सिफात के साथ बाकी रहेंगे, इसी हालत में बाकी रहेंगे, ये गुरु हमेशा रहेगा। तो यहां से हम देखते हैं कि इस जो है हदीस मुतवातिर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने वही नतीजा जो है बयान किया है जो हमने कुरान मजीद के मुख्तलिफ आयात से लिया, कि अल्लाह तबारक तआला कहता है कि हिदायत पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, और ये हिदायत हम कैसे करेंगे? कुछ खुसूसी अफराद होंगे जिनको हम मुस्तफा और मुजतबा बनाएंगे, फिर उनकी हिदायत हम करेंगे, वो खालिस हिदायत पे होंगे, हमारी तरफ वाली हिदायत पे, और वो फिर आगे हिदायत करेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है उनसे हिदायत हासिल करें। इन इस हदीस में रसूल अकरम ने इसी गुरु के अपनी उम्मत में होने की जो है ताईद की है और कहा है कि मेरी उम्मत में ऐसा गुरु रहेगा और ये कयामत तक ऐसा गुरु रहेगा कि जो अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता होगा, और बाकी लोगों की जिम्मेदारी है कि उसके मुताबिक जो है उनकी हिदायत के मुताबिक चले। अब एक आखिरी चीज जो है इसमें ऐस करते हैं, उसके बाद जो है आज के इस दर्स को मुकम्मल करते हैं, कल फिर जो है मजीद बातें जो है आपकी खिदमत में ऐस करेंगे। ज्यादा अमली तौर पे कल का दर्स है जो कि हमारे लिए अपनी जिंदगी के हवाले से ये है, ये ज्यादातर निजाम और सिस्टम के हवाले से था कि जो समझना लाजमी था ताकि उसके मुताबिक जो है इंसान चले। ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व ताला ने किताबें नाजिल नहीं की, किताबें नाजिल की हैं, मुख्तलिफ सहीफे नाजिल किए हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके, मुख्तलिफ अम्बिया पे सहीफे नाजिल किए हैं, हजरत इब्राहिम पे सोहफ इब्राहिम है, और फिर जो है चार बुनियादी बड़ी किताबें हैं जिनमें पहली जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे है, तौरेत है, फिर जो है वो जबूर है, उसके बाद इंजील है, उसके बाद ये रसूल अकरम की नबुवत का खालिद और हमेशा रहने वाला मोजज़ा जो है कुरान मजीद है। ऐसा नहीं है कि किताब नहीं है, किताब है, लेकिन किताब अकेली हिदायत के हवाले से काफी नहीं होती, अकेली किताब हुज्जत नहीं होती, किताब के साथ जब तक जो है हादी ना हो तब तक जो है किताब हुज्जत हुज्जत नहीं होती। इस हवाले से ये आयत जो है आपकी खिदमत में अर्ज करनी थी कि ये सूरह आले इमरान की आयत है 101, जिसमें इन दोनों के बयान के बाद कहा जा रहा है कि अब तुम्हारे पास क्या बहाना है कि तुम इनकार करते हो, वह कई फतक शुरू ना, तुम इनकार कैसे करते हो जबकि हमने हुज्जत को तमाम कर दिया। हुज्जत तमाम कैसे हुई, वह अन तुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाही, तुम पर अल्लाह की आयात तिलावत की जा रही है, अल्लाह की आयात तिलावत की जा रही है, कुरान मजीद, इसका मतलब हिदायत मौजूद है। वफीकुम रसूलुहु, और तुम्हारे दरमियान रसूल मौजूद है, ये हादी है, वो हिदायत, आयात जो है हिदायत है और तुम्हारे दरमियान रसूल है, ये हादी, हिदायत और हादी दोनों ये मिलके जो है वो हुज्जत तमाम करती है। सिर्फ किताब हो तो भी हुज्जत तमाम नहीं होती, अगर जो है वो हिदायत तो हो हादी ना हो तो हिदायत के बहुत सारे मफाहिम बन जाते हैं, लोग उसमें जो है वो अपने अपने तरह के जो है वो नतीजे निकालना शुरू कर देते हैं और वो चीज जो है वो हिदायत से रह जाती है। इसलिए किताब का उस्ताद और किताब का तर्जुमान भी होना लाजमी है, और दोनों हों तो फिर अल्लाह ताला कहता है वह कैफ तकफुरून, अब तुम कैसे इनकार करते हो जबकि हिदायत भी मौजूद है और हादी भी मौजूद है। अगर हिदायत में से तुम्हें कि हिदायत समझ में नहीं आती तो रसूल तुम्हें समझा देगा, अगर हिदायत में से तुम जो है वो इख्तलाफ करते हो तो रसूल तुम्हारा वो इख्तलाफ भी हल कर देगा, तुम्हारे सारे मसाइल जो है नजरियाती हल कर देगा। अब कैसे जो है कुफ्र करते हो, अब कैसे इनकार करते हो। और इन दोनों को मिला के अल्लाह तबारक तआला ने इसको जो है अपनी रस्सी कहा है, जिसको हबलिल्लाह कहा है, तो कहा कि ये दोनों मिलके अल्लाह की रस्सी बनती है। रस्सी चूंकि जो है वो कम से कम दो धागों से मिलके बनती है, एक धागे से धागा होगा फिर वो रस्सी नहीं होगी, तो हादी और हिदायत दो धागे मिलके रस्सी बनती है। फिर कहा वमन यअतसिम बिल्लाह है, जो अल्लाह की इस रस्सी को मजबूती से थामेगा, फकद हो दिया इला सिरात मुस्तकीम, वो सिरात मुस्तकीम की तरफ जो है वो हिदायत पाएगा। तो यहाँ पे आके ये नतीजा कुरान मजीद ने दिया कि सिर्फ एक किताब होना काफी नहीं है, उसके साथ साथ हादी होना भी लाजमी है, जो अपने दौर में मसलन रसूल थे, नबी थे, और नबी और रसूल ना होंगे तो फिर क्या होगा, जैसे हमने आयात में देखा, या उसी नबी के आबा में से होंगे या जुरियात में से होंगे या भाइयों में से होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि मेरी उम्मत में ये एक गुरु हमेशा रहेगा जो इस तरह से हिदायत पर होगा। वो कुरान मजीद और ये मिलके जो है वो एक रस्सी बनाते हैं, और इंसान की जिम्मेदारी है कि इस रस्सी को मजबूती से पकड़े। व मैं यअतसिम बिल्लाह, जो अल्लाह की इस रस्सी को मजबूती से पकड़ेगा, फकत हो दिया इला सिराते मुस्तकीम, वो सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत पा गया, उसकी हिदायत हो गई, जैसे कि हिदायत सिराते मुस्तकीम की तरफ। इसी के हवाले से हम मजीद जो है वो अगर अगर देखना चाहें तो हदीस सकलैन भी देख सकते हैं कि रसूल अकरम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है और एक अहले बैत है, मेरे इतरत अहले बैत है। किताब वही जो यहाँ पे कहा गया आयतुल्लाह फीकुम रसूलुहु, इसके जानशीन है अहले बैत। तो किताब और हादी, हिदायत और हादी, ये दोनों मिलके इंसान के लिए हुज्जत तमाम करती हैं। अगर इनमें से किताब हो और हादी ना हो तो हुज्जत तमाम नहीं होगी। हुज्जत तमाम तब होगी जब हिदायत के साथ हादी भी हो। फिर कहा अल्लाह ने, वो कैफ तकफुरून, अब कैसे इनकार कर, अब तुम्हारे पास क्या बहाना है, अब तुम कैसे इनकार कर सकते हो, अब तुम्हारे सारे बहाने खत्म हो गए, हिदायत भी है हादी भी है। तो ये निजामे हिदायत है जो कुरान मजीद ने बयान किया है, और हम जो है इसको इसी तरह से जो है देखते हैं। कल इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आखिर इसके बाद जो है वो, चूंकि हमने पिछले दर्स में भी कहा था कि उमूमन कहा जाता है कि जी ठीक है कि जब आइम्मा अहले बैत जाहिर थे तो फर्क था बाकी मकातिब फिक्र से, कि आपके पास हादी था और दूसरे के पास सिर्फ हिदायत थी, हादी नहीं था। लेकिन अब तो इमाम जमाना की गैबत के बाद अब तो दोनों के पास किताबें हैं, दोनों के पास रावी हैं, दोनों के पास रिवायतें हैं। तो अब जो है वो एक को दूसरे से तरजीह कैसे देंगे, अब कैसे इमाम जमाना जो गैबत में है, गैबत में रह कर वो हुज्जत कैसे होंगे, गैबत में रह के उनकी हुज्जत कैसे तमाम होगी, ये इंशाल्लाह कल जो है हम आप खिदमत में जो है वो बयान करेंगे। आज का दर्स जो है वो इसी हद तक जो है हम रखते हैं कि कुरान मजीद ने हिदायत का पूरा निजाम बयान किया है, और हिदायत के इस निजाम को हमने समझना है। इसीलिए शायद जो है वो इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो वसलाम ने एक अपनी हदीस में इरशाद फरमाया था, जिसको शेख कुलैनी ने अपनी किताब जो अलकाफी है, अलकाफी के मुकदमे में उसको जो है वो दर्ज किया है कि मल्लम यारिफ अमरना मिन अल कुरान। इमाम अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स भी हमारे अम्र इमामत को, अम्र विलायत को कुरान के जरिए से हासिल नहीं करेगा, कुरान के जरिए से उसकी मारिफत हासिल नहीं करेगा, लम यतनक्का बिल फितन, वो फितनों से कभी महफूज नहीं रहेगा। फितनों से महफूज रहने के लिए जो इमामत अहले बैत है, जो विलायत अहले बैत है, वो कुरान मजीद से उसका निजाम लेना ये लाजमी है। कुरान मजीद के जरिए से निजाम जब हमारे पास आ जाएगा, फिर आगे जो है उस पे जो बुनियाद बनेगी वो मजबूत इमारत की बुनियाद बनेगी। लेकिन अगर हम कुरान मजीद से नहीं लेंगे आइम्मा अहले बैत की इमामत और विलायत का निजाम, तो फिर जो है हम हमेशा फितनों में फंसे रहेंगे। ये इस हवाले से आपकी खिदमत में जो है वो एक हिस्सा था कि हम देखें कि कुरान मजीद क्या निजाम पेश करता है हिदायत का, और उस निजाम के हवाले से फिर हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। अल्लाह तबारक तआला हमें तौफीक इनायत फरमाए इंशाल्लाह। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाजिर हूँ अगर कोई सवाल हो तो आपकी खिदमत। जी
जी, जिनके जिनके सवाल हैं वो लोग हैंड रेस करिए और अपनी सिटी बता दीजिए।
السلام علیکم آغا صاحب، مشتبہ زیدی راولپنڈی پاکستان سے بات کر رہا ہوں.
جی فرمائیے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
سب سے پہلے تو آپ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے، اور وہی بات کہ دلیل حدیث کی صحت کی دلیل بھی اگر قرآن پہ پرکھی جائے اور ثابت ہو تبھی حدیث بھی معتبر ہے. تو قرآن سے یہ ثابت ہونا ضروری ہے کہ نظام ہدایت کیا ہے، اور قرآن سے ہی ہمیں استدلال کرنا چاہیے. تو اس ضمن میں بہت ہی اچھی کوشش ہے. میں صرف ایک ضمنی طور پہ کہ حضرت زکریا، داؤد، سلیمان، ایوب، صالح، لوط، یہ سارے کے سارے انبیاء جو ہیں، یہ حضرت ابراہیم کے بعد کے ہیں یا ان سے پہلے کے ہیں؟ یہ حضرت نوح
جی
کے بعد کے ہیں یا حضرت ابراہیم کے بعد کے؟
جی جی ان میں سے جو حضرت لوط ہیں وہ تو حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے.
ٹھیک ہے.
وہ حضرت ابراہیم کے تقریباً جو ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے چچا زاد بھائی تھے, تو وہ تو اسی دور کے ہیں. لیکن باقی جتنے انبیاء کے نام اس ان آیات میں ہیں وہ حضرت ابراہیم کے بعد ہیں,
اچھا، وہ حضرت ابراہیم کے بعد سے
سارے
ہیں.
حضرت ابراہیم کے بعد کے. جی
صحیح صحیح،
پہلے جو ہے
ٹھیک.
حضرت
جی،
اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں, پھر حضرت یعقوب وہ
یعقوب
اس
ان
کے
کے
بیٹے
پوتے
ہیں,
ہیں.
پھر حضرت
دوسرا
یوسف وہ بیٹے, اور پھر جو ہے اس کے بعد کے جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں, یہ
جی،
انبیاء جو ہے اسی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے. ادھر جو ہے صرف حضرت اسماعیل کا نام جو ہے لیا ہے, جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے بلکہ بڑے بیٹے تھے, جن کی نسل میں سے جو ہے قریش اور رسول اکرم اور یہ جو ہے سلسلہ ہے. تو یہ سارے بعد کے ہیں سوائے حضرت لوط کے, کہ جو حضرت ابراہیم کے دور میں تھے.
ٹھیک ٹھیک جزاک اللہ، بہت شکریہ.
سلامت.
और दिया चैट में भी एक सवाल है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद और खानदान वाले दुनिया की हर कंट्री में तो गए नहीं, तो फिर ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, रशिया, यूरोप और अमेरिका, हिदायत का निज़ाम किसने फैलाया?
जी बुनियादी तौर पे मैंने इस हवाले से अर्ज किया था कि ये कुरान मजीद ने मिसालें इसलिए दी हैं, इसलिए कि कुरान मजीद के जो पहले मुखातब थे जिनसे कुरान मजीद खिताब कर रहा था वो वही थे जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना मरकज मानते थे. या तो मुशरिकीन मक्का थे वो भी हजरत इब्राहिम को मरकज मानते थे, या ईसाई और यहूदी थे वो भी हजरत इब्राहिम को अपना मरकज मानते थे. बाकी दूसरी जगह के हवाले से मिसालें नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह पे अल्लाह तबारक तआला ने हादी नहीं भेजे. अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में कहा है कि हमने हर कौम में एक जो है नजीर भेजा है, खबरदार करने वाला भेजा है. अब उनकी मिसालें नहीं बयान हुई, उसका सबब यह है कि अगर उस दौर में कुरान मजीद जो है वो ऐसे इलाकों की मिसालें देते कि जो अरबों को पता ही नहीं है, तो वो फिर जो है खुद परेशानी का बायस बन जाता कि अरब कहते कि ये तो हमें पता ही नहीं है, ये कहाँ पे है, कुरान मजीद पता नहीं किस दुनिया की बात कर रहा है, तो वो फिर परेशानी का बायस हो जाती. इसलिए उन्हीं की मिसालें दी हैं कि जो उनके पास एक मारूफ अशखास थी जिनको वो कबूल करते थे, तो मिसालें भी उनकी जो है दी जाती हैं जो पहले से मौजूद हों. बाकी ऐसा नहीं है कि कुरान मजीद कहता है कि हमने सिर्फ जो है वो इसी इलाके में अंबिया भेजे हैं, नहीं, कुरान मजीद कहता है कि कोई ऐसी उम्मत नहीं है कि जिसमें हमारा कोई नज़ीर खबरदार करने वाला न गुजरा हो.
जी आगा, इसमें एक सवाल ये उठता है कि आपने जब ये गुफ्तगू कर रहे थे तो उस दौरान आपने दो तीन दफा फरमाया कि नबी और उसका खानदान
जी
वो हिदायत का मरकज होता है, तो वो नजीर कौन है जो जो इसमें नहीं आए, जो इस गो यानी तो वो नबी थे इसका मतलब?
जी देखिए इसी दौर में कुरान मजीद ने उनके जो है नाम कुछ के लिए हैं, मसलन जो है वो हजरत लुकमान का नाम लिया है, लुकमान के हवाले से एक सूरा सूरह लुकमान मौजूद है। ये भी बनी इसराइल के दौर में है, लेकिन ये नबी नहीं है, लेकिन ये हादी हैं और उनकी हिदायतें इतनी खूबसूरत हिदायतें हैं कि उनकी हिदायतों को कुरान मजीद ने बयान किया है, और वो हजरत लुकमान की जबानी बयान हुई हैं, जो अपने बेटे को नसीहतें कर रहे हैं तो वो कुरान मजीद ने बयान की है। इसी तरह से जो है वो बाकी भी जो है वो हो सकते हैं, जैसे कि कुरान मजीद ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हजरत खिजर को बयान किया है। ये जो हजरत खिजर है ये भी कोई जो है वो नबी नहीं है, लेकिन ये भी हादी है। तो पिछले दौर में चूंकि नबुवत का दौर जारी था तो ज्यादातर अंबिया होते थे, लेकिन रसूल अकरम के बाद चूंकि नबुवत का दौर खत्म हो गया है, इसलिए उनके जो है वो जानशीन जो होंगे वो नबी नहीं होंगे। तो कुरान मजीद ने अपने निजाम के तौर पे जो है बयान किया कि हम पहले तो या किसी को नबी मुंतखब करेंगे और उनको मोजजात देंगे ताकि वो पहचाने जाएं। अब उसके बाद जो है हम हिदायत उसके खानदान में रखेंगे ताकि फिर पहचान लोगों के लिए इतनी मुश्किल न रहे, क्योंकि एक खानदान को पहचान चुके हैं, नबी को पहचानने के हवाले से वो उस खानदान को पहचान चुके हैं, क्योंकि नबी को पहचानने का एक जरिया खुद उसका खानदान होता है। खानदान कितना जो है किस तरह का है, उसमें क्या चीजें हैं, वो भी नबी के पहचानने में मददगार होते हैं। तो एक दफा वो पहचान चुके हैं नबी के खानदान को, अब अगर उसी के खानदान में अल्लाह तबारक व तआला हिदायत जारी करे तो वो आसान रहता है लोगों को पहचानने के हवाले से। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने या तो नबी बनाया या उस नबी के खानदान में रखा कि जिसमें कहा तीन चीजें, या आबा में से, या जुरियत में से, या उनके भाइयों में से। तो ये इस तरह से जो है उधर जी
तो अगर ये इतने सारे कंट्री है दुनिया भर में, यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर हमारे 12 इमाम हैं, तो उसमें से किसी ने भी नहीं बताया कि इस जगह पे कौन कौन नबी आए? अगर कुरान ने नहीं बताया तो
जी
बाकी तो
देखें जो कुरान मजीद में नाम है वो तो 25 या 26 हैं, 25 या 26। ये इसलिए हम कहते हैं कि दो ऐसे नाम हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दो नाम एक ही शख्सियत के हैं, कुछ कहते हैं कि ये दो शख्सियतें हैं। अगर दो शख्सियतें हैं तो 26 नाम है, वरना 25 नाम है। जबकि बाकी बहुत सारे अंबिया हैं कि जिनके नाम जो है अहादीस में मौजूद हैं, रसूल अकरम ने बयान किए या आइम्मा अहले बैत ने बयान किए। जैसे अभी मैंने आपकी खिदमत में जो है वो बयान किया कि हजरते जो मूसा के जानशीन थे हजरत यूशे, यूशे जो है उसका नाम जो है कुरान मजीद में नहीं है, लेकिन रसूल अकरम ने बयान किया और आइम्मा ने बयान किया। इसी तरह से बहुत से और अम्बिया हैं कि जिनके नाम कुरान मजीद में नहीं है, अहादीस में बयान किए गए हैं, लेकिन वो भी उसी इलाके के जो वहां पे शोहरत रखते थे। क्योंकि अगर कुरान मजीद ऐसे नाम बयान करे, मिसाल के तौर पे ऐसे अफराद को बयान करे कि जिनको वहां के लोग जानते ही ना हो, तो वो मिसाल नहीं बनती। इसलिए कुरान मजीद ने जो मिसाल दी है वो उन्हीं की दी है जो उस दौर के लोग उनको जानते थे, लेकिन कुरान मजीद ने मजमुई तौर पे जो है कहा है कि कोई ऐसी उम्मत नहीं है कि जिसमें हमारा नजीर नहीं गुजरा, हमारा जो है मत खबरदार करने वाला नहीं गुजरा, हर 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 कौम में गुजरा है, हर मिल्लत में गुजरा है। वो फिर जो है वो उसके नाम बयान नहीं हुए, टोटल नाम जो है बयान नहीं हुए। जैसे शोहरत है कि जी 1,24,000 हैं, अब 1,24,000 में से अगर टोटल आप नाम भी ले लें जो रिवायात में भी हैं तो 100 या उससे थोड़े से ऊपर नीचे बनते हैं, बाकी जो है कौन से हैं उनके बयान नहीं हुए। चूंकि ये जो तारीख है ये ज्यादा कोई जरूरी नहीं है इंसान के लिए कि तारीख बयान हो, नहीं, असल जो है वो निजाम बयान हो। उनमें से कुछ मिसाल के तौर पे बयान कर दिए, काफी है ये आगे जो है खुद समझने के हवाले से। तो इसी तरह से हो सकता है कि ये जो जिसको आजकल हम हिंदुस्तान कहते हैं, इसमें पुराने दौर में अंबिया गुजरे हों, चीन में गुजरे हों, इसी तरह से दूसरे इलाकों में गुजरे हों, तो लाजमन गुजरे होंगे, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि वो कौन थे। जी
जी आगा, इसमें सवाल समझ में नहीं आ रहा आगा कि अगर वहां पे गुजरे हैं तो उनका तो एक बंदा भी सारे के सारे काफिर हैं, कोई बंदा भी मुसलमान नहीं निकला वहां से, उस पॉपुलेशन से।
ये लाजमी नहीं है, क्योंकि आप देखें कि एक नबी आता है, वो कोशिश करता है, हो सकता है कि वो नबी खुद ही कामयाब ना हुआ हो। जैसे हम देखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दौर में जब आए तो टोटल ईमान लाने वाले 12 अफराद थे उनके ऊपर, जिसको हवारी कहा गया है, उनमें से भी एक जो है वो वापस हो गया था, बाकी 11 बचे। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं, बहुत सारे अंबिया ऐसे हैं कि जिन पे ईमान लाने वाला एक या दो होते थे। तो ये लाजमी नहीं है कि वहां पे हिदायत के वहां पे आसार वो नबी छोड़ के चला जाए, या वो आसार आज तक मौजूद हों, ऐसा लाजमी नहीं है। इसलिए अंबिया आए, अपनी जिम्मेदारी अदा की, फिर लोगों ने अगर जो है कबूल नहीं किया तो वो लोगों की जिम्मेदारी है, वो अंबिया की जिम्मेदारी नहीं है, वो अल्लाह की जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह की जिम्मेदारी पहुंचाना है। अब लोग कबूल नहीं करते, कुफर करते हैं, सारी कौम मिलके कुफर करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता अल्लाह की हुज्जत होने पे। जी
तो आगा, इसमें एक सवाल और बनता है कि जिस जिस जनरेशन ने इनकार किया, काफिर हो गए, और उसके बाद कई जनरेशन के बाद भी कोई नबी उस इलाके में नहीं आया, यानी हमारे
जी
सामने भी 1400 साल से हम देख रहे हैं, उससे पहले भी
जी
जो हिस्ट्री है उसमें भी नजर नहीं आता, तो बिल्कुल हिस्ट्री तक नहीं है उसकी,
जी
ये कैसे मुमकिन है कि, और खुद यानी इमामों ने, नबियों ने,
जी जी
कुरान ने
जी
बताया, अगर
जी
बताया तो ज्यादा बेहतर होता कि भाई
जी
हाँ यार ये नबी थे, तो उससे क्या फायदा होता? उससे यही फायदा होता जैसे हम ईसा ईसाइयों से बोलते हैं, यहूदियों से बोलते हैं, भाई तुम्हारे पास जो नबी आया वो हमारा ही मुसलमान थे वो।
जी
तो हर एंगल से अगर आप देखें तो ये बात समझ में नहीं आती कि ना
जी
आसार हैं।
देखिए देखिए, मैंने आपकी खिदमत में वो अर्ज किया कि अगर उस दौर में कुरान मजीद, मसलन ऑस्ट्रेलिया की बात बताता, तो वहां पे जो अरब थे वो सबसे पहले तो इसी को जो है एतराज का सबब बनाते कि ये ऑस्ट्रेलिया है कहाँ, हमें तो पता ही नहीं है भाई, किसी ने देखा है? पता नहीं किस जो है वो दुनिया की कुरान मजीद बात करता है, तो जादू है। तो वो फिर खुद जो है वो परेशानी का सबब बन जाता। इसलिए मिसाल हमेशा जो दी जाती है वही दी जाती है जो लोगों के जहनों में पहले से मालूमात हैं, उसमें से मिसाल दी जाती है। कुरान मजीद ने मिसाल दी है, कुरान मजीद कोई तारीख की किताब नहीं है, और तारीख जो है बयान करना इतना ज्यादा फायदेमंद भी नहीं है, सवाए इसके कि निजाम बयान किया जाए, फिर थोड़ी सी मिसालें दी जाए उस निजाम को समझने के लिए, ये जो है वो काफी होता है। बाकी ये है कि जिन तक नहीं पहुंचा तो उन पर हुज्जत तमाम कैसे है, असल ये मसला है, जिसको हम कल जो है इंशाल्लाह फिर बयान करेंगे कि जिन तक नहीं पहुंचा, मसलन जो है वो आज बहुत सारी नस्लें हैं जिन तक अभी तक जो है हिदायत नहीं पहुंची, तो फिर जो है वो उनके लिए हुज्जत तमाम कैसे है, वो फिर कल इंशाल्लाह जो है इसके हवाले से बात करते हैं।
जी आगा, यही सवाल था एग्जैक्टली।
हिदायत पहुंचने के हवाले से जो बहस है वो ये है कि नबी की जिम्मेदारी रहनमाई है, रहनमाई रास्ता दिखाना, यानी वो अपने जबान के जरिए से दूसरों के जहन तक जो है बात पहुंचाता है कानों के जरिए से। इसलिए हर नबी को अल्लाह तबारक व ताला ने उसी कौम की जबान में भेजा है, उसी कौम की जबान में भेजने का जो सबब है वो यही है कि वो लोग उसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। ये जो नबी की जिम्मेदारी है, अव्वलीन जिम्मेदारी है, रहनमाई है, पहुंचाना, अल्लाह तबारक व ताला के पैगामात पहुंचाना उसको खूबसूरत तरीके से, उसको दलाइल के जरिए से, उसको जो है नसीहत के जरिए से, उसको जो है वो अकली दलाइल से, ये पहुंचाना, ये मतलब ये है कि जहन तक पहुंचाना। फिर जब अगला इंसान उसको कबूल करता है तो फिर अल्लाह तबारक ताला वही हिदायत उस इंसान के अंदर में उस हिदायत को वजूद अता करता है, फिर ये इंसान हिदायत पर आ जाता है। हिदायत पे आने का मतलब सिर्फ जबान से पहुंचाना नहीं है, लेकिन नबी की जिम्मेदारी पहुंचाना है, इससे आगे कोई नहीं। वमा अलर रसूल इल्लल बला, रसूल की जिम्मेदारी पहुंचाना है। अब अगला अगल कबूल करता है तो कबूल करने के बाद फिर अल्लाह तबारक ताला की रहमत होती है और वही हिदायत उस इंसान के अंदर में वजूद में आ जाती है, तो ये इंसान हिदायत पर आ जाता है। ये मतलब है हिदायत पहुंचने का। और ये जो पहला काम है इसको हम रहनुमाई कहते हैं, और जो दूसरा काम है उसको हम रहबरी कहते हैं, यानी उस हिदायत के दर्जे तक पहुंचाना, ये मतलब है इसके। जी
सलाम अलैकुम आगा जान
अलैहि सलाम। जी
जी, अगर हम सरगोधा से बात करें
जी फरमाइए।
आगा जान, हमें भी यही पॉइंट समझना था कि हिदायत पहुंचने का मतलब क्या है। अब आपने फरमाया कि आप इस पे कल बात करेंगे, कि यहाँ पे कई दफा बयान होता है कि अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत जो है वो किसी पर वाजे ही नहीं हुई और वो फिर इनकार कर रहा है, तो वो शायद उस तरह से कसूरवार नहीं है। तो
जी
अगर उस पर वाजे नहीं हुई तो फिर उसका अंजाम क्या होगा?
जी
मतलब
जी
हिदायत पहुंच, हम किस बात को कहेंगे कि हाँ इस तक हिदायत जो है वो पहुंच गई है?
जी इसको कुरान मजीद ने बयान किया है, कहा गया कि उदउ इला रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, के अपने रब की तरफ दावत दें। सबसे पहले क्या है, हिकमत के जरिए से। हिकमत क्या होती है? हिकमत ये होती है अकली दलाइल, जो दलाइल के जरिए से हम बात करें, ये हिकमत है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। और फिर जो है नेक नसीहत के जरिए से। नसीहत क्या होती है? नसीहत ये होती है कि किसी भी चीज के फवायद भी आप बताएं और न होने के नुकसान भी बचाएं बताएं। मिसाल के तौर पे इसको कबूल करेंगे तो ये फायदा है, नहीं कबूल करेंगे तो नुकसान ये है। ये फायदा और नुकसान बयान करना ये नसीहत है। और फिर तीसरा जो है दर्जा कहा गया, वो जादिल हम बिल्लती ही अहसन, अगर वो बहस करने आ रहे हैं तो आप उनपे उनसे बहस भी करें और जिदाल भी करें, लेकिन जिदाले अहसन करें। ये तीन तरीके हैं पहुंचाने के। ये कुरान मजीद ने जो है पहला हिकमत कहा, दूसरा जो है वो नसीहत कहा, और तीसरा जो है वो जिदाले अहसन कहा। ये तीन तरीके हैं पहुंचाने के। क्या हमने जो है वो किसी शख्स के सामने हजरत अली अलैहिस्सलाम या किसी और इमाम की इमामत को हिकमत के जरिए से बयान किया है, या नसीहत के जरिए से बयान किया है, या जिदाले अहसन? ये तीन तरीके हैं। अगर ये हुआ है तो फिर वो जिम्मेदार है, अगर नहीं हो सका, हमारे यहाँ कोई कमी रह गई, तो फिर अगला जिम्मेदार नहीं है। फिर ये हुज्जत जो है कैसे उस पे तमाम होगी, नहीं होगी, नहीं होगी तो क्या होगा, ये कल जो है हुज्जत के हवाले से हम बहस करेंगे, इसको तफसील के साथ जो है देखेंगे। जी
जी, इसमें जो मुख्तलिफ तबकात के मुख्तलिफ अंदाज हैं, जैसे कि खुद हमारे शियों में भी मतलब बहुत से ऐसे नजरियात वाले हैं जो जो इमाम ने बातें कही हैं उस पे अमल नहीं कर रहे, खुद से घड़ी हुई चीज़ों पे अमल कर रहे हैं और कह रहे हैं उनको कुछ बताने की भी कोशिश करो तो वो कहते हैं बस यही ठीक है जो हमने सीखा है और इसी में इमाम खुश हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होगा?
जी ऐसे हवाले से वही बात जो है कहने की जरूरत है कि दीन अल्लाह तबारक तआला का है। दीन हमारे आबाओ अजदाद या हमारे मुआशरे में रहने वाली कौमों, उनके रवाज रस्म, इसका नाम नहीं है। दीन अल्लाह तबारक तआला का है। उसी को हक अल्लाह तबारक तआला ने कहा है कि अल हक को मेरे रब्बे, हक वही है जो तेरे रब की तरफ से आए, बाकी तो सारी जो है वो चीजें हैं। तो अगर हक इंसान के साथ होगा तो वो हक तो इंसान को किफायत करता है, फायदा देता है, लेकिन अगर हक ना हो तो फिर फायदा नहीं देता। इसलिए ये हमारी जो तबलीग का निज़ाम है, खासतौर पे जो हमारी अभी मेंबर जिन जो है हालात से गुजर रहा है, वो सही तौर पे हम जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इसलिए लोग जो है वो जिसको कहते हैं कि इस तरह के बहाने बनाते हैं। क्योंकि हम जो है मेंबर के जरिए से हम खतीब जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। अगर हम जिम्मेदारी सही तौर पे अदा करना सिखाएं लोगों को तो ये हालात जो है बेहतर होंगे, लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है हमारी कि हम जो है इस दौर में गुजर रहे हैं। हमारे पास जो मेंबर है वो है 50 साल पुराना, लोग हैं इस दौर के, तो कुछ वक्त लगेगा जब ये मेंबर जो है अपने दौर का मेंबर जो है बन जाए, तो इसमें थोड़ी सी ये परेशानी रहेगी। लेकिन ये जहन में वाजे होना चाहिए हर इंसान के कि हक वो नहीं है कि जो हो रहा है, हो सकता है उसमें हक भी हो उसमें बातिल भी हो, हक वही है जो खुदा की तरफ से है। तो मैंने ये यकीन दहानी करनी है कि ये जो मेरे पास आया हुआ है ये खुदा की तरफ से है कि नहीं है, ये मैंने यकीन दहानी जो है वो करने की जरूरत। जी
जी अगर एक और क्वेश्चन था जी
जी
आप
अलैकुम सलाम जी।
आसफ, ये जो खानदाने अंबिया में से हैं जो जो मनसबे रिसालत या नबुवत में हैं वो तो इनन हुज्जत हैं, लेकिन क्या जो मनसबे रिसालत या नबुवत पे नहीं है, जिस तरह आपने भी हजरत खजर या हजरत लुकमान या हजरत जुलकरनैन या इस तरह की हस्तियां, तो क्या वो भी हुज्जत इलाही का दर्जे पे हैं?
जी वो भी हुज्जत इलाही के दर्जे पे हैं, इसलिए कि हुज्जत का तमाम होना सिर्फ और सिर्फ रसूलों के साथ मखसूस नहीं है। हुज्जत जो है वो गैर रसूल के साथ भी जो है वो हो सकती है। हमने जो है वो पीछे ये देखें, ये जो आयत सबसे बड़ी हमने दी थी इसमें देखें कहा गया वह मिन आबाएहिम और उनके आबा में से, वह जुरियातहिम और उनकी जुरियत में से, वह इख्वानहिम उनके भाइयों में से, वजतबैनाहुम उनको हमने जो है इज्तबा किया था, मुंतखब किया था, वहदैनाहुम इला सिरात मुस्तकीम और हमने उनकी जो है सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत की थी। तो जिसके हिदायत अल्लाह तबारक ताला करे वो हुज्जत होता है दूसरों के लिए, और उसके हुज्जत होने की यही जो है वो है कि जिसको कहा गया कि उलाइक अल्लदीन हदल्लाहु बेहुदाहुम इक्तदे, तुम उनकी इक्तदा करो। ये जो मुक्तदा बनता है ये हुज्जत है, ये हुज्जत है। तो ये जो मुक्तदा बना ये सिर्फ अंबिया नहीं बने बल्कि आबा जुरियात इख्वान वो भी मुजतबा हुए, उनकी अल्लाह तबारक तआला ने हिदायत की और कहा कि ये हैं वो जिनकी हिदायत अल्लाह ने की है, उलाइक अल्लदीन हदल्लाहु ये वो हैं जो जिनकी हिदायत अल्लाह ने की है, फबे हुदाहुम इक्तदे अब तुम इनकी जो है इक्तदा करो, ये हिदायत में तुम्हारे लिए हुज्जत है। तो ये हुज्जत जो है रसूल या नबी के साथ मखसूस नहीं है, गैर नबी और गैर रसूल जो है वो भी हुज्जत हो सकता है। जी
जजाकअल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत।
वालेकुम सलाम जी।
और जी अगर चैट में क्वेश्चन एक और था कि सलाम अल्लाह की तरफ से जब हिदायत के लिए अफराद मुंतखब किए हैं, तो फिर हम आम इंसान तबलीग के जरिए कौन सी हिदायत करते हैं?
जी चूंकि ये जो अल्लाह तबारक तआला का हादी होता है ये हर जगह नहीं पहुंचता और हर जगह पहुंच भी नहीं सकता, इसलिए कि एक फर्द होता है। हो सकता है एक ही वक्त में एक से ज्यादा हादी हों, लेकिन वो भी हर जगह पे हर गांव में हर शहर में नहीं होते, हर मुल्क में भी नहीं होते। तो एक होता है जो पूरी दुनिया में कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा हो ठीक है, कभी होता है दो तीन हो गए लेकिन इससे ज्यादा कभी नहीं हुए। हुए, तो फिर उनका निजाम कैसे होता है, उनकी हिदायत कैसे पहुंचती है? तो वो अपने फिर शागिर्द बनाते हैं, अपने जो है लायक वो जो है मुबल्लिग बनाते हैं, जिनको वो भेजते हैं, और फिर आगे जो है हिदायत चलती है। तो बाकी जो मुबल्लिगीन होते हैं वो इस हादी से मुंसलिक होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस हादी से लें, और जितना हादी से लेते हैं उतना ही आगे जो है वो बयान करें। तो ये हादी और आम आवाम के बीच में फिर जो है राबता बन जाते हैं, ये जो मुबल्लिगीन होते हैं। तो मुबल्लिग ये होना भी लाजमी है, इसके बगैर भी निजाम नहीं चलेगा, इसलिए कि हादी तो एक जगह पे होगा, वो हर जगह नहीं पहुंच पाएगा। तो हादी फिर जो है वो ये जराए जो है इस्तेमाल करता है, जिसमें फिर मुबल्लिगीन की जो है जिम्मेदारी है वो भी बन जाती। जी
हाँ जी, दुआ करना होगा, दुआ करना।
कुछ
जी
चैट
आप
में भी सवाल आए हुए
जी
हैं। आगा सवाल आया हुआ, हिदायत पहुंचने के क्या मायने हैं? जिस शख्स तक हिदायत नहीं पहुंची तो उसका अंजाम क्या होगा?
जी ये मैंने पहले पहले इसका जवाब दिया था। हिदायत पहुंचने का मतलब वही है कि या तो जो हादी है वो हिकमत के जरिए से बात पहुंचाता है, उद्उहु इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तुल हसन, या नसीहत के जरिए से या जिदाले हसन के जरिए से। ये इस तरीके से अगर कोई बात पहुंची है तो ये हो गया पहुंचना। अब जिन तक नहीं पहुंचा उनकी जिम्मेदारी क्या है, ये कल जो है हुज्जत के हवाले से हम पूरी बहस करेंगे, फिर देखेंगे कि जिन तक नहीं पहुंचा तो फिर उनका उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, उनका हाल क्या होगा। ये कल इसको बयान करेंगे, इसको तफसील से बयान करने की जरूरत है, इसको सवाल के जवाब में 1 मिनट के अंदर जो है बयान करना जो है वो मुमकिन नहीं है। इसलिए कल जो है वो इसी हवाले से हम बहस करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी नबी रहा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे मिस्र में थे, बाकी जगहों पे तो नहीं थे, तो बाकी जगहों तक तो उनकी हिदायत नहीं पहुंची, फिर उनकी क्या जिम्मेदारी है? फिर जब मिस्र से जो है वो निकल आए जुल्म की वजह से, और सहराए सीना और तेह में जो है वो फिरते रहे, फिर तो बाकी सब लोगों से वो कट गए, सिर्फ अपनी कौम के साथ हैं, तो फिर दुनिया का क्या होगा? ये सारी चीजें हैं, इसलिए इसको कल जो है इसको हुज्जत के तसव्वुर को जो है कल बयान करेंगे, और इंशाल्लाह फिर जो है अगर उस पर कोई सवाल हुआ तो आपकी तरफ से मैं हाजिर हूंगा। जी
जी अगर दुआ सुनना।
जी कोई सवाल हो तो
और सवाल नहीं देख रहा, अगर दुआ सुनना हो तो।
जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीयकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि साअति व फी कुल्ली साअ वलीयन व हाफिदा وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآله
ترجمة